नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, पीटर राइजिंग और नेट चैम्बरलेन की मैनेजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एमएस 700 एग्जाम गाइड। माइक्रोसॉफ्ट 365 में टीम्स प्रशासन पर केंद्रित एक व्यावहारिक प्रमाणन मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा के विषयों को दोहराना नहीं, बल्कि उन प्रशासनिक निर्णयों को समझाना है जिनसे संगठन में सहयोग, संचार और नियंत्रण संचालित होते हैं। पुस्तक टीम्स एडमिन सेंटर और विंडोज पावरशेल दोनों के उपयोग के माध्यम से सेवा की योजना, कॉन्फ़िगरेशन और निगरानी को जोड़ती है। इसकी विषय वस्तु में माइग्रेशन, नेटवर्क तैयारी, गवर्नेंस, अतिथि पहुंच, सुरक्षा और अनुपालन उपकरण, चैट, बैठकें, लाइव इवेंट, फोन सिस्टम, टीम सदस्यता और ऐप नीतियां शामिल हैं। अध्यायों के अंत में परीक्षा उन्मुख अभ्यास और मॉक परीक्षा होने से पाठक अपनी तैयारी का आकलन कर सकता है। यह पुस्तक उस समय की टीम्स क्षमताओं और एमएस 700 परीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप लिखी गई है, इसलिए नवीनतम उत्पाद परिवर्तनों के लिए आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज भी साथ देखना आवश्यक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, माइग्रेशन और नेटवर्क तैयारी को प्रशासन की आधारशिला मानना। पुस्तक का आरंभ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को केवल स्थापित कर देने वाली सेवा के बजाय नियोजित परिवर्तन के रूप में देखने से होता है। किसी पुराने सहयोग या संचार मंच से टीम्स पर आने में उपयोगकर्ताओं की जरूरतें, मौजूदा कार्यप्रवाह, पहचान व्यवस्था और अपनाने की प्रक्रिया समझना जरूरी है। इसी कारण माइग्रेशन योजना का लक्ष्य सिर्फ तकनीकी स्थानांतरण नहीं, बल्कि अव्यवस्था और उपयोगकर्ता बाधा को कम करना है। नेटवर्क तैयारी वाला भाग इस सोच को ठोस बनाता है। आवाज, वीडियो, बैठक और लाइव इवेंट साधारण वेब ट्रैफिक जैसे नहीं है, क्योंकि विलंब, जिटर और पैकेट हानि सीधे बातचीत की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। पुस्तक बैंडविड्थ क्षमता का आकलन, नेटवर्क प्लानर, पोर्ट प्रोटोकॉल तथा कनेक्टिविटी परीक्षण जैसे प्रशासनिक विषयों को परीक्षा संदर्भ में रखती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि खराब कॉल अनुभव को केवल क्लाइंट समस्या मानना गलत हो सकता है। प्रशासक को साइटों, उपयोगकर्ता घनत्व और नेटवर्क मार्गों के आधार पर जोखिम पहचानना होता है। इस कवरेज की उपयोगिता यह है कि पाठक नीति कॉन्फ़िगरेशन से पहले बुनियादी सेवा क्षमता पर विचार करना सीखता है। टीम्स रोलआउट की सफलता इसलिए लाइसेंस देने या टीम बनाने से पहले नेटवर्क और परिवर्तन योजना की गुणवत्ता पर निर्भर रहती है। दूसरा, गवर्नेंस। जीवन चक्र और अतिथि पहुंच के बीच नियंत्रित सहयोग। टीम्स में प्रत्येक टीम का संबंध माइक्रोसॉफ्ट 365 समूहों, साझा सामग्री और सदस्यता नियंत्रण से जुड़ा होता है। इसलिए पुस्तक गवर्नेंस को केवल प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सहयोग को टिकाऊ बनाने वाले नियमों के रूप में प्रस्तुत करती है। नामकरण नीति और अवरुद्ध शब्द जैसी सेटिंग संगठन की खोज योग्यता और पेशेवर मानकों में मदद करती हैं। समाप्ति नीति, आर्काइव, हटाने और पुनर्स्थापन के विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्क्रिय टीमों का संचय सामग्री ढूंढना कठिन बनाता है और अनावश्यक जोखिम बढ़ा सकता है। पुस्तक जीवन चक्र संबंधी निर्णयों को प्रशासनिक जिम्मेदारी से जोड़ती है, जहां टीम कब बन सकती है, कौन उसका स्वामी होगा और कब उसे संग्रहित या हटाया जाएगा, जैसे प्रश्नों के उत्तर जरूरी होते हैं। अतिथि पहुंच का भाग इसी संतुलन का दूसरा पक्ष है। बाहरी सहयोग परियोजनाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन उसे आंतरिक सदस्यों जितनी खुली क्षमता देना हमेशा उपयुक्त नहीं होता। प्रशासक को अतिथि अनुमतियों, साझाकरण सीमाओं और संगठन की सुरक्षा अपेक्षाओं के बीच समन्वय करना पड़ता है। इस विषय से स्पष्ट होता है कि अच्छा गवर्नेंस उपयोगकर्ताओं को रोकने का नाम नहीं है, उसका उद्देश्य अनुमोदित, स्पष्ट और ऑडिट योग्य सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि टीम्स का विस्तार नियंत्रण खोए बिना हो सके। तीसरा, सुरक्षा। अनुपालन और एंडपॉइंट प्रबंधन की संयुक्त जिम्मेदारी। पुस्तक सुरक्षा और अनुपालन को टीम्स की अलग थलग विशेषताएं नहीं मानती, क्योंकि चैट चैनल, फाइलें और बैठक सामग्री व्यापक माइक्रोसॉफ्ट 365 वातावरण में रहती है। एक टीम्स प्रशासक को यह समझना पड़ता है कि सामग्री का भंडारण किन संबंधित सेवाओं से जुड़ता है और नीतियां उपयोगकर्ता व्यवहार तथा डेटा जोखिम दोनों को कैसे प्रभावित करती हैं। इस दृष्टि से पहुंच नियंत्रण, अतिथि उपयोग, संदेश व्यवहार और अनुपालन अपेक्षाएं एक ही प्रशासनिक चित्र के हिस्से हैं। पुस्तक का सुरक्षा संबंधी कवरेज परीक्षा उम्मीदवार को यह पहचानने में मदद करता है कि नीति चुनना केवल सुविधा सक्षम करने का काम नहीं है। हर नीति के परिणाम गोपनीय जानकारी, रिकॉर्ड रखने और संगठनात्मक नियंत्रण पर पड़ते हैं। एंडपॉइंट उपकरणों का प्रबंधन भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। उपयोगकर्ता टीम्स को डेस्कटॉप, मोबाइल और साझा उपकरणों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए प्रशासन को उपकरण अनुभव, अद्यतन और प्रमाणित उपकरणों की भूमिका पर ध्यान देना होता है। यहाँ केंद्रीय विचार यह है कि सुरक्षित सहयोग के लिए उपयोगकर्ता, सेवा और उपकरण तीनों स्तरों पर नियंत्रण चाहिए। पुस्तक इस जटिलता को परीक्षा के प्रशासनिक कार्यों के जरिए व्यवस्थित करती है। हालांकि वास्तविक संगठन में सुरक्षा टीम, अनुपालन टीम और पहचान प्रशासक के साथ समन्वय भी अनिवार्य होगा। चौथा, चैट बैठकें, लाइव इवेंट और कॉलिंग के लिए नीति आधारित अनुभव। टीम्स का दैनिक उपयोग चैट और चैनलों से दिखता है, पर पुस्तक बताती है कि इन अनुभवों के पीछे विस्तृत नीतियां काम करती हैं। संदेश भेजने, टीम बनाने, सदस्यता बदलने और ऐप इस्तेमाल करने की क्षमताएं अलग उपयोगकर्ता समूहों के लिए अलग ढंग से नियंत्रित की जा सकती हैं। यह अंतर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही संगठन में सामान्य कर्मचारी, बाहरी अतिथि, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और संवेदनशील विभागों की जरूरतें समान नहीं होती। बैठक और लाइव इवेंट प्रबंधन का कवरेज प्रशासन के संचार पक्ष को आगे बढ़ाता है। बैठक नीतियां, आयोजन सेटिंग्स और सहभागिता संबंधी विकल्प उपयोगकर्ता अनुभव, गोपनीयता और संचालन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। कॉलिंग के अध्याय फोन नंबर और फोन सिस्टम के प्रबंधन तक जाते हैं, जिससे टीम्स को केवल सहयोग मंच नहीं, संचार अवसंरचना के रूप में समझने का आधार मिलता है। इस भाग की प्रमुख उपयोगिता नीति असाइनमेंट की अवधारणा में है। वैश्विक सेटिंग हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए प्रशासक को भूमिका और व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार नीति लागू करनी पड़ती है। पुस्तक परीक्षा तैयारी के साथ यह व्यावहारिक विवेक भी विकसित करती है कि अधिकतम सुविधाएं देना हमेशा बेहतर अनुभव नहीं बनाता। सही अनुभव वह है जो उपयोगी सुविधाओं, नियंत्रित जोखिम और स्पष्ट प्रशासन के बीच संतुलन बनाए। अंत में एडमिन सेंटर पावर शेल, निगरानी और मॉक परीक्षा का कार्यप्रवाह। इस मार्गदर्शिका की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह प्रशासन को केवल अवधारणाओं की सूची के रूप में नहीं रखती। टीम्स एडमिन सेंटर के साथ विंडोज पावर शेल का उल्लेख पाठक को दो पूरक प्रशासनिक तरीकों से परिचित कराता है। ग्राफिकल इंटरफेस रोजमर्रा की कॉन्फ़िगरेशन और स्थिति देखने में सहज है, जबकि स्क्रिप्ट आधारित काम दोहराए जाने वाले कार्यों, बड़े पैमाने के बदलावों और मानकीकरण में उपयोगी हो सकता है। पुस्तक में उपयोग निगरानी का विषय भी शामिल है। उपयोग और सेवा संबंधी संकेतकों को देखना इसलिए आवश्यक है कि प्रशासक अनुमान के बजाय प्रमाण पर निर्णय ले सके। उदाहरण के लिए, अपनाने के स्तर, उपयोग के रुझान या गुणवत्ता संबंधी समस्या को पहचानने के बाद ही उचित नीति, प्रशिक्षण या नेटवर्क कार्रवाई तय की जा सकती है। इस तरह निगरानी योजना और समस्या समाधान का पुल बनती है। अंतिम मॉक परीक्षा और उसके उत्तर पुस्तक को प्रमाणन तैयारी के अनुकूल बनाते हैं। वे पाठक को विषयों की पहचान भर नहीं, प्रश्न की मांग के अनुसार प्रशासनिक विकल्प चुनने का अभ्यास देते हैं। फिर भी इन्हें वास्तविक अनुभव का विकल्प नहीं मानना चाहिए। टीम्स लगातार बदलने वाली क्लाउड सेवा है, इसलिए लैब अभ्यास और आधिकारिक दस्तावेज के साथ पुस्तक का उपयोग सबसे ठोस तैयारी प्रदान करता है। निष्कर्ष में, मैनेजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स MS 700 एग्जाम गाइड उन IT पेशेवरों, माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रशासकों और प्रमाणन उम्मीदवारों के लिए सबसे उपयोगी है, जिन्हें टीम्स को संगठनात्मक स्तर पर तैनात, नियंत्रित और संचालित करना है। विशेष रूप से यह उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बुनियादी माइक्रोसॉफ्ट 365 परिचय है, लेकिन जिन्हें नेटवर्क, गवर्नेंस, बैठकों, कॉलिंग, सदस्यता और ऐप नीतियों को एक प्रशासनिक ढांचे में समझना है। पुस्तक का लाभ इसकी व्यापक विषय सीमा में है। यह केवल परीक्षा के अलग उद्देश्यों को सूचीबद्ध नहीं करती, बल्कि माइग्रेशन योजना से लेकर उपयोग निगरानी तक प्रशासन के पूरे चक्र को जोड़ती है। एडमिन सेंटर और पावर शेल दोनों पर ध्यान इसे केवल सैद्धांतिक परीक्षा नोट से अधिक उपयोगी बनाता है। जीवन चक्र, अतिथि पहुंच और अनुपालन पर इसका जोर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक टीम्स प्रशासन में सुविधा और नियंत्रण का संतुलन लगातार आवश्यक होता है। मॉक परीक्षा अभ्यास को दिशा देती है और पाठक को अपनी तैयारी की कमी पहचानने में सहायता करती है। समान प्रमाणन पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर टीम्स के रोजमर्रा के संचालन, नीति आधारित कॉन्फ़िगरेशन और संचार सेवाओं की संयुक्त प्रस्तुति है। फिर भी इसे प्रकाशित संस्करण के समय का मार्गदर्शक समझना चाहिए। परीक्षा उद्देश्यों और टीम सुविधाओं में परिवर्तन संभव है, इसलिए नवीनतम आधिकारिक अध्ययन गाइड, उत्पाद दस्तावेज और व्यावहारिक लैब के साथ इसका अध्ययन करना सबसे उचित रहेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर राइजिंग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।